Before I start this podcast, a quick appeal that this episode is also available in the video form, and I think I would recommend you to watch it in the video form on the YouTube. You can just type my name, which is Anurag Minus Verma, and the name of the guest, Anoop Kumar, and you'll find the episode on YouTube, or else you can just go to the description box where I have provided the link for the YouTube. Welcome to Anurag Minus Verma podcast. This is episode 81, and our guest is Anoop Kumar, who's the founder of Nalanda Academy. He's someone who's doing revolutionary work by providing education to marginalized students from all over the country and creating a completely different, unique, unheard model of education where he has helped hundreds of students from very poor class and caste background to gain admission in the top universities in India and abroad. So this is one of the episode which in many ways would be an eye-opener, also heartbreaking and yet very, very inspiring. So please be aware that this podcast contains some details that might be triggering for some people as it touches upon the topics such as suicide and forms of caste traumas. So before I start this episode, request you to please do consider supporting it so that this podcast can survive, especially in the era when such platforms for rational and important debates are shrinking down. This podcast is totally free to consume, and now it is becoming increasingly difficult to survive and maintain the consistency due to the lack of support and no financial model. So this is why you have to step up and help this podcast. So if you like this podcast, then please do head to the description box and support it through Buy Me a Coffee wishlist, where I'm raising the fund for this podcast. You can also support me on Patreon and PayPal. Please do check them out. All the links are mentioned in the description box. And now let's start the episode number 81 of Anurag Minus Verma podcast. I think it would be great to discuss your life before Nalanda Academy. So if you can talk a little bit about that. And I was also reading an old interview of yours where I read that you also created a series of documentaries in your life. Of documentary at one point of time named The Death of Merit. That means that You have been experimenting with a lot of things before you decided to devote yourself to Nalanda.
So before Nalanda, I spent some 13 years in Delhi. I studied in JNU for some time for my post-graduation. And that was the time where I actually started, working in the movement. And my first venture was actually to start a magazine. So It's a print magazine. It was known as Insight Young Voices. So the whole idea behind that was, during my own student life, I have seen that none of us were able to articulate about our problems as a Dalit student, right? So, and there was no literature. So when I came to JNU, I started, trying to look out for the literature, which was, available on caste. But none of the literature, none of the articles, none of the scholars actually talked about experiences of Dalit students, especially in higher education. When I was running this magazine, then only I got this, insight about how pervasive caste discrimination actually is in higher education, especially in higher education, because till then, even I used to believe that caste exists only in rural areas. Caste exists only in the backwaters of UP and Bihar. Caste is Mayawati, caste is Lalu Yadav, caste is reservation, right? But when I entered engineering, when I came to JNU, and then when I started traveling to all these premier education, then I understood that how caste is structurally embedded in these institutions, the way the entrance exam is designed, the way your syllabus is designed, the way your entry point itself has been created in such a way that even if you enter, if you are able to take admission, you will always feel that you are unwelcome there. You do not belong there. You don't deserve to be there. So these are not coincidences. These are very, very well designed system that has been working post independence, and especially in the field of higher education, in the name of merit, in the name of efficiency and merit. So that I could experience learning from other students. So that led to what the documentary that we were talking about earlier, because I came across, while not going to the different universities, in every, almost in all premier universities, one thing was common, that there were a number of Dalit students who have committed suicide. Whether I went to IIC Bangalore, whether I went to IIT Delhi, Kanpur, IIT Roorkee, or Pondicherry University, everywhere it was common that there is some or the other Dalit student has recently committed suicide. And suicide is a very difficult, complicated topic, right? And it's very difficult to prove also that something, something such as caste has existed. So once when I started talking to the students and their family members, then these stories started emerging. So we thought that why don't we document it? Because see, the thing is that we were from the day one, we were very clear that we are not going to be able to prove it. Nobody is going to, upper caste intelligentsia, upper caste academia will not believe that this has happened because of caste. But at least these documentaries will make our community little aware about what is happening with their kids. And in that way, probably we might able to build something, some platform, some kind of support system. So the whole idea was this behind this documentary was this to make our community aware about this, that this is what is happening. And second was to challenge this whole concept of merit. Because we named it the death of merit, right? So when these students commit suicide, these were not your Dalit students who come through reservation. Almost all of them were toppers from their schools and colleges. So these were the three major things I did before Nalanda. One was to run a magazine, then we made documentaries, and the third was to run a telephone helpline. The whole idea was that our students should not feel that they are all alone in this. Somebody is there, some group is there to listen to them at least. Because from the day one, we were very clear that we are not going to bring much change because we are a very small group and we don't have that kind of political patronage. So that too, we were very clear ki justice to nahi lekar aayenge, justice to hum nahi dila payenge. Aur jab bhi hum, whenever we used to go and visit students' family, the first thing I used to tell is that, see, I have just come as a community member. I have come to you as a part of the community. I am not here to give you, bring justice to your child. So that is impossible. So the whole idea was ki community may say within community something has to emerge because that will give the confidence to the students. So I ran telephone helpline, but again it was very depressing. Every day we used to get hundreds of calls, about discrimination and about atrocities, about students getting failed, about students not getting scholarships. So after a point of time, we all got very depressed. Four of us were working, we got very, very depressed because we fought many court cases also, but in none of the cases we could win, except one which we won against IIT Bombay. So it was, carry on day after day listening to, these stories of discrimination and, complaints and harassment and suicides. It became very difficult for us emotionally. And that was the time when I decided to give up. Okay, I'm not going to do this whole my life. I want to do something concrete on the ground, and I want to see results. When I work whole day, at the end of the day, I want to see the result of my labor, right? I want to feel happy. I want to feel that I am able to contribute something. So that is how this whole idea of Nalanda Academy came, that we will create our own space, we will train our own students away from all upper caste influences, and then see how they fare up, how they are able to perform. Once we are able to train them, we are able to give them some sense of community, right? And then let's see how our students fare in these spaces. So this is how Nalanda was born.
And you said very interesting thing about the idea of merit, and I was also listening to one of your interview where you explained what is the मीनिंग ऑफ मेरिट फॉर यू. तो अगर आपको एक बार इस चीज़ पे बड़ी बातें होती हैं, जैसे पूरा कि मेरिट चला जाता है रिजर्वेशन से, या फिर लोअर कास्ट के स्टूडेंट आ जाते हैं तो मेरिट का क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये देश का सबसे एक प्राइम टॉपिक है मेरिट वाला.
जी
तो आप
जी
मेरिट
जी
को किस तरह से देखते हैं, मेरिट की परिभाषा क्या हो सकती है इस देश में?
मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ जब भी मैं वर्कशॉप लेता हूँ, मीटिंग लेता हूँ, और मैं आपसे और आपके जो सुनने वाले हैं उनसे भी एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप जब बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर चुनते हैं कि हमको इस डॉक्टर के पास जाना है, इस हॉस्पिटल में, ना, तो आप कैसे चुनते हैं? क्या आप उसका सर्टिफिकेट मांगते हैं? क्या आप उसका एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स मांगते हैं? क्या आप उसका क्या रैंक आई थी ये मांगते हैं? ठीक है, ये सब कुछ नहीं मांगते, आप उसका गुडविल देखते हैं कि उसका फील्ड में उसके बारे में लोग क्या बोलते हैं, यानी कि उसका फील्ड में क्या तजुर्बा है, उसका अपने फील्ड में क्या परफॉर्मेंस है, एंड दैट इज द रियल मेरिट इन एवरी फील्ड, वेदर इट इज लॉ, वेदर इट इज मेडिसिन, कोई भी फील्ड में बेसिक चीज होता है कि आपका एप्टीट्यूड इस फील्ड में कैसा है, दैट इज द रियल मेरिट। और दूसरा, ये जो कंपटीशन होते हैं, जितने भी कंपटीशन है, बेसिकली ये एक प्रकार का ये जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं बेसिकली इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, लोग ज्यादा है। ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए नहीं है कि हम सबसे ज्यादा 100 सबसे इंटेलिजेंट लोगों को हम IIT में इंजीनियर बना रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 सीट है और भरने वाले 10,000 लोग। तो अगर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका 100 पे सिलेक्शन होता है और 99 वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक नंबर कम है तो वो 10% बेवकूफ है या वो मेरिटोरियस नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि एंट्रेंस एग्जाम्स आर बेसिकली योर स्क्रीनिंग टेस्ट, कि आपको स्क्रीन का आपको आपको लेना नहीं है, आपको निकालना है लोग। इट द ऑल दीज एंट्रेंस एग्जाम्स आर नॉट डिजाइन टू चूज, इट इज टू एक्सक्लूड पीपल, कि इससे नीचे। तो ये और तीसरा पॉइंट आता है आपका कि आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, खास तौर पे जितने भी प्रीमियर एजुकेशनल कॉलेजेस हैं, आप मुझे बताइए कि जिसमें जितने भी बच्चे हैं वहां पे जो पढ़ जो निकालते हैं एग्जाम, उनका लिस्ट हम निकालते हैं, एक सर्वे करते हैं कि जितने भी टॉप 100 में आए हैं नीट में या JEE में या क्लैट में या टॉप 1000 में आए हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका सोशल बैकग्राउंड कैसा है। तो आप देखेंगे कि ये सारे एग्जाम जो है वो अपने आप में बहुत एलिटिस्ट है ना। तो कास्ट तो बाद में है, ये पहला क्लास क्लास को ही करता है। अब आप IIM का एग्जाम ले लो, आप IAS का ले लो, आपको लाखों रुपए चाहिए तब आप वो एग्जाम निकालने के लायक रहते हैं, है ना। आपको उसका फॉर्म भरने से लेके उसका मटेरियल, तो बेसिकली दीज आर वेरी एलिटिस्ट एग्जाम, और इसीलिए EWS की जरूरत पड़ती है इनको। अब आप सोचे EWS ये जो रिजर्वेशन उन्होंने दिया है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर अपर कास्ट भी पुअर है तो वो भी IIM नहीं जा पाता है। तो ये जो मेरिट का जो क्वेश्चन है ना कि अपर कास्ट सारे मेरिटोरियस है और सारे दलित जो है वो नॉन मेरिटोरियस है, उसी से आपने खुद ही उसको डिसप्रूव कर दिया कि EWS लाना ही इस बात का सूचक है कि मेरिट अल्टीमेटली डिपेंड करती है आपका सोशियो इकोनॉमिक, आपका जो भी बैकग्राउंड है, तो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा फैक्टर है आपके मेरिट। फिर आपका दूसरा आता है कि तो तीसरा चौथा आता है आपका कि इंग्लिश, हर जगह आपने इंग्लिश कंपलसरी कर रखी है ना। आपको टिस में, सोशल वर्क में, हाँ बार बार वही एग्जाम्पल देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ कि टिस में हमें सोशल वर्कर के रूप में ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, सोशल वर्कर का काम क्या है? या तो आप स्लम में काम करोगे जाके, या आप रूरल एरिया में काम करोगे, गांव में जाओगे मनरेगा पर काम करोगे, आप इंदिरा आवास योजना पे काम करोगे, इन सब चीजों पे काम करोगे, है ना। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश में होगा, इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, सब कुछ इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो आपको फॉर इवन फॉर समबडी लाइक यू हैव टू बिकम अ सोशल वर्कर, यू हैव टू बी वेरी गुड इन इंग्लिश, है ना, देन ओनली यू कैन बिकम अ सोशल वर्कर। तो अब इंग्लिश अपने आप में यहाँ पे इंडिया में एलिट का एक निशानी है, क्योंकि तो अगर आप देखो तो आज भी आप डेटा उठा के देख लो कि 80-90% बच्चे जो हैं भारत के वो अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं। अब वो अंग्रेजी में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है, 10-12-15% होते हैं जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, और आपके सारे एंट्रेंस जो है वो सब इंग्लिश मीडियम, तो वो ऑलरेडी एक आपने बहुत बड़ी एक ऑब्स्टिकल आपने खड़ी कर दी। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है वो आप मेरिट मेरिट बोलते हैं, और मेरिट जो है वो बेसिकली आपका एक हथियार बन गया है। आपने क्या किया है, मेरिट को डिफाइन कर दिया है नंबर से, कि अगर किसी के 90% है तो वो 70% वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा ज्यादा होशियार है, ज्यादा मेरिटोरियस है। ये आपने बहुत ही सिंपल गणित बहुत ही सिंपल करके आपने बोल दिया, जो कि बहुत सुनने में बहुत अच्छा सही लगता है कि हाँ यार सही तो है, नंबर नंबर ज्यादा है तो इंटेलिजेंट ज्यादा है, लेकिन
खुद दलित भी
नंबर्स
मानने लग जाते हैं कई
हाँ दलित भी
बार।
मानते हैं, मैं भी मानता था बहुत पहले, बट एक्चुअली नंबर्स आर ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट गुड नंबर्स, आई एम नॉट डिनाइंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन नंबर्स एक्चुअली अगर आप सीबीएसई का रिजल्ट निकालिए, आप किसी भी स्कूल का रिजल्ट निकालिए, 99% लाने वाले कौन लोग हैं, वो दिल्ली में ही आएंगे, बैंगलोर में ही आएंगे 99, झारखंड के गांव में बैठा हुआ आदिवासी का बच्चा 99 क्यों नहीं ला पाता है, या दलित का बच्चा क्यों नहीं ला पाता, या ओबीसी का बच्चा, या नोमेडिक ट्राइब का बच्चा 99% झारखंड के गांव में, बिहार के गांव में बैठ के क्यों नहीं ला पा रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ दिल्ली में या कुछ जगहों पे रहने वाले लोग इंटेलिजेंट हैं, या वही 99% है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स जो है वो बेसिकली आपकी आपका बैकग्राउंड को भी बताता है, वो भी उसका भी ये मार्कर है कि आप अगर अच्छे बैकग्राउंड से हैं, यू विल बी एबल टू स्टडी इन गुड स्कूल, यू हैव ऑल द फैसिलिटीज, सो डेफिनेटली यू विल गेट 90%+ मार्क्स। तो इसमें कोई ये रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे बच्चे होते हैं, अब वही है कि मेजोरिटी आप देखिए हमारे बच्चे जो है, अब वो मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा जिसको हर सवर्ण जानता है, एक दलित आईएएस का बेटा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो मुझे आज तक नहीं मिला सोशल साइंस में, तो एटलीस्ट कि दलित आईएएस का बेटा मेरे साथ रिजर्वेशन लेके पढ़ रहा हो, तो वो उनका उनके हिसाब का दलित है, लेकिन मैं जितने दलित लड़कों और लड़कियों को जानता हूँ, आदिवासी बच्चों को जानता हूँ, वो ज्यादातर सेमी अर्बन और रूरल बैकग्राउंड से ही आते हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लिटरेट है ना, सेकंड जनरेशन मैक्सिमम मेरे जैसे लोग हैं, मैक्सिमम बहुत ज्यादा हुआ तो सेकंड जनरेशन लिटरेट है, इससे ऊपर कोई नहीं। तो आपने हमको एक दो जनरेशन बस हुई है, और एंड यू हैव बीन जजिंग अस, यू हैव बीन अब्यूजिंग अस, यू हैव बीन यू नो आई मीन इट्स सो ब्रूटल द वे द कंसेप्ट ऑफ मेरिट एंड यू नो द होल डिस्कोर्स ऑफ रिजर्वेशन इज स्टेक्ड अगेंस्ट अस, इट इज सो ब्रूटल, हमारे बच्चों का पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। अब हमारा बच्चा गाय चरा के भैंस चरा के है ना, लड़की हमारी जो बच्चियां हैं वो घर का पूरा खाना बना के 60% नंबर लेके आती है, 55% नंबर लेके आ रहे हैं, है ना, पूरी मेहनत करके, तो मेरे लिए तो वो मेरिटोरियस है ना, फॉर मी दैट बॉय और गर्ल इज मोर मेरिटोरियस, वो हैव यू नो स्कोर दिस मच मार्क्स, यू नो फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, एंड रादर देन इन कंपेरिजन विद दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन एलीट इंस्टीट्यूशंस, राइट, और जो दिल्ली में है। एक बार मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक बार मैं नलसर हैदराबाद में मेरा एक मीटिंग था, मतलब एज ए स्पीकर बुलाया था, तो सारे एलएलबी एलएलएम वाले थे, और आपको पता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कितनी एलीट होती हैं,
बिल्कुल
तो बात चल रहा था रिजर्वेशन पे, तो यू नो जब भी आई स्पीक तो अगर अपर कास्ट है ऑडियंस में तो पहला क्वेश्चन आता है रिजर्वेशन, है ना, आप दुनिया भर का कुछ भी उनको सुना दो, बट उनका वो जैसे कुत्ते की पूंछ पूंछ होती है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो तुरंत घूम के उधर ही आते हैं, व्हाट अबाउट रिजर्वेशन। तो मेरा बोला, मैं सिंपल सा बोला कि आपका ये जो क्लैट का ये जो चल रहा है एलएलबी एलएलएम जो भी है, आप जाइए जरा, आपके सब लोग एंट्रेंस एग्जाम से आए हैं, ठीक है, आपने बहुत क्वालिफाई यानी कि मेरिट सब सब में मेरिट है, तो आप एक सर्वे करिए अपने क्लास में जाके, सिर्फ अपर कास्ट लोगों का, आप शेड्यूल कास्ट को भूल जाइए, सर हम तो मेरिट है ही नहीं, हम तो मान लेते हैं कि हम तो आ गए रिजर्वेशन की वजह से, वेयर इज द पुअर ब्राह्मण बॉय और गर्ल इन योर क्लास, गरीब आपका गरीब ब्राह्मण कहाँ है आपके क्लास में, आप में 70-80 है, 100 में से 70-80 आप लोग हैं, 70-80 में आप सभी के सभी सुपर एलिट हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का डिजाइन है वो ऐसा है कि ओनली एलिट विल कम, तो अवर एलिट विल ऑल्सो कम. तो अगर आप बोलते हो ना कि ये दलित लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपका एग्जाम का डिजाइन ही ऐसा है कि सिर्फ एलिट ही आ सकता है, चाहे वो एलिट शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो एलिट अपर कास्ट हो. तो आप मेरे को पूरे कैंपस में आप जाइए और सर्वे करके दिखाइए मुझे कि कोई अपर कास्ट जो रिक्शा वाला का बेटा हो बेटी हो, या जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ की खेती हो, या मजदूर का बेटा. आप मेरे को एक एग्जाम्पल लाके दिखा दो आपके पूरे नजर से, ठीक है? और वहीं पे जितने SC ST स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको इनका सर्वे करके बताऊंगा कि 70-80% ऐसी बैकग्राउंड से होंगे, आप ही के इंस्टीट्यूशन है ना. तो आप करके देखो, आप सिर्फ अपने क्लास का करके देखो. तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका मेरिट का क्वेश्चन है, आपको ये लगता है ना कि ये एंट्रेंस एग्जाम आर द ट्रू मार्कर, ट्रू ट्रू टेस्ट ऑफ मेरिट. नहीं, आपके खुद की कम्युनिटी में भी सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो सुपर एलिट है, क्योंकि आपका ये सारे एंट्रेंस एग्जाम का डिजाइन ही वैसा है. तो जब आपके वीक लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हमको भी थोड़ा समय लगेगा, है ना. और ये मतलब इसमें कुछ, ये कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स नॉट समथिंग, मेरिट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. फॉर अ टीचर इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड कि कोई बच्चा कहाँ से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, कोई बच्चा कहाँ से आ रहा है. तो अगर वो इंग्लिश मीडियम में, अपर कास्ट है, शहर का है, तो वो डेफिनेटली इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट दिखेगा, इंटरव्यू में ज्यादा आंसर दे पाएगा. फिर लास्ट का रहता है कि आपका जो टेस्ट क्या करते हैं आप एग्जाम में पूछते क्या है. जैसे टिस में मैं बताया था, पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ. टिस में क्वेश्चन आते हैं, बिलियर्ड टेबल पे कितने कलर की गेंदे होती हैं, ये आपका GK का क्वेश्चन है, ठीक है? और ये यूरोपियन फुटबॉल में ये क्लब वो क्लब. अब भाई हम भी, हमको भी नहीं पता, हमने तो बिलियर्ड टेबल सिर्फ टीवी पे देखी है ना, ऐसे कभी देखा होगा इधर उधर, हमने तो आज तक टच भी नहीं किया, हमको तो पता भी नहीं. तो अब आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि बिलियर्ड में कितने कलर की गेंदे होती है या क्या होता है, एंड दिस इज योर टेस्ट फॉर माई इंटेलिजेंस, राइट? तो फिर यूरोपियन फुटबॉल के बारे में आप पूछ रहे हो, है ना.
स्मॉल
तो
टाउन्स में तो मना
आपके
किया जाता है बिलियर्ड्स वगैरह के लिए, कि बिगड़े हुए बच्चे हैं वो पूल वूल खेलते हैं, तो हमें तो मना किया गया है कि कभी जाओ ही मत वहां पे।
हम तो उस एरिया से आए हैं जहां पे ये भी बात नहीं पहुंची है कि पूल खराब चीज है, तो मतलब वो है ही नहीं. व्हेन आई केम टू दिल्ली, देन आई केम अक्रॉस, और वो भी अभी तक आई हैव नेवर प्लेड, आई हैव नेवर इवन टच्ड वो पूल का टेबल. और मेरे को मैं एक बार रविकांत के यूनिवर्सिटी गया तो उसने दिखाया था कि सर देखो ये बिलियर्ड टेबल ऐसा होता है. अब दिस इज हाउ यू 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 नो यू आस्क क्वेश्चन. फिर आप JNU का एंट्रेंस एग्जाम, सॉरी हाँ JNU का एंट्रेंस एग्जाम, आप MMA अमर्त्य सेन का आपने दे दिया है बड़ा सा टेक्स्ट, और उसको आप बोल रहे हो कि एनालाइज करो. मुझे बताओ कि कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी में, है ना, लोकल यूनिवर्सिटी में अमर्त्य सेन जो है वो आपको BA में पढ़ाया जाता, सिवाय दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा, आपका कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में होगा. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ रिडिकुलसनेस इज इन योर एग्जाम, ठीक है? और आप बोलते हो कि एक तो इंग्लिश में है, फिर दूसरा आपका क्वेश्चंस जो है जिससे आप नॉलेज टेस्ट करते हो वो बहुत एलिटिस्ट है, और फिर आप बोलते हो कि हमें मेरिट नहीं, है ना, आप लोग मेरिट हो जैसे. तो अब मुझे दुख इस बात का होता है कि इंग्लिश को लेकर, कि इंग्लिश इतना बड़ा बैरियर है. आई नेवर फाउंड एनी एकेडमिक रिसर्च और एकेडमिक पेपर फ्रॉम एनी ऑफ द टॉप एजुकेशनिस्ट इन इंडिया. कभी कभार दे विल स्पीक क्या इंग्लिश हैज क्रिएटेड अ डिस्पैरिटी, लेकिन आप भी JNU से हैं, आप मुझे बताओ कि कभी इंग्लिश इतना जरूरी क्यों है हायर एजुकेशन में, इस पर कोई डिबेट, कोई मतलब हुआ. दूसरा, आप मुझे एक पेपर बताओ जिसपे मेरिट के क्वेश्चन को इंट्रोगेट किया हो कि व्हाट इज मेरिट. एवरीबडी, एवरी अपर कास्ट, चाहे वो लेफ्ट का हो राइट का हो, वो ही हैज यू नो उनका कंसेंसस है कि नंबर लाना मेरिट है, ठीक है? आप प्रो रिजर्वेशन कितनी भी बात कर लो, लेफ्ट वाले बात करते हैं, बहुत सारे अपर कास्ट है प्रो रिजर्वेशन, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक आप मेरे को वो जो मेरिट का जो प्रेशर है मेरे सर पर बैठा दिया गया है ना, जो जो शेम, जो स्टिग्मा, उसको जब तक मैं चैलेंज नहीं करूंगा, आई कैन नॉट इवन लिव लाइफ विद डिग्निटी, क्योंकि मैं हमेशा, अब मैं अगर IITian भी हूँ, ठीक है, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ या शेड्यूल ट्राइब हूँ, मैं IITian भी हूँ ना, तो मुझे मालूम है कि मेरे क्लासमेट्स जिंदगी भर मेरे को नीचे ही देखेंगे, भले ही मैं कॉरपोरेट ऑफिस में हूँ, भले ही मेरे पास ऐसे ऐसे दोस्त हैं, दे आर इन टॉप सर्जन इन US, बट स्टिल दे हाइड देयर आइडेंटिटी, दे आर स्टिल नॉट एबल टू टेल दैट दे आर शेड्यूल टॉप सर्जन हैं, टॉप हैं अपनी फील्ड के, लेकिन उनको प्रिटेंड करके रहना पड़ता है कि दे हैव कम थ्रू मी, बिकॉज तो यहाँ पर ये कास्ट नहीं है, आप समझ में, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज द घोस्ट ऑफ मेरिट, कि आई एम नॉट इवन एबल टू एंजॉय माई एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस, क्योंकि जब भी मैं बोलूंगा आई एम एन IITian, अब जैसे ट्विटर पे डालते हैं IAS लोग, अरे मैं IAS ऑफिसर हूँ, है ना, मेरे 10th में इतने ही नंबर आए थे लेकिन मैं फिर भी IAS ऑफिसर, आई डोंट थिंक एनी शेड्यूल्ड कास्ट कैन से दिस IAS ऑफिस की, क्योंकि उसका, अब देखो ना टीना ढावी का कितना
टीना
ट्रोलिंग हो
ढाबी
गया
का
बेचारे
ट्रोलिंग,
का,
हाँ हाँ
जबकि
रेगुलरली
मतलब
चलता है उनका
सोचे,
ट्रोलिंग।
सोचो, शी इज अ टॉपर, नंबर वन रैंक लाई है, फिर भी उसको मेरिट के नाम पे गालियां पड़ती, ठीक है, एंड और इसीलिए मेरा जो लेफ्ट लिबरल से हमेशा से झगड़ा रहा है, बहुत पुराना झगड़ा रहा है, कि यू हैव नेवर चैलेंज दिस कंसेप्ट, क्योंकि यू योर सेल्फ बेनिफिटेड फ्रॉम इट, आपने JNU को मस्त एक अपना कुकून बना लिया, क्रांतिकारी, ठीक है, अब उसमें अगर आप मेरिट के क्वेश्चन को टच करोगे तो सबसे पहले तो आप ही पे उंगली उठेगी कि इतने
हाँ
सारे आप कहाँ से आ गए, है ना, तो इसलिए बहुत ही कन्वीनियंटली मेरिट के क्वेश्चन को टच नहीं किया है,
इवन
पहले तो रिजर्वेशन का भी विरोध होता था, अभी रिजर्वेशन का सपोर्ट होता है, लेकिन आज भी नोबडी क्वेश्चंस द कांसेप्ट ऑफ मेरिट कि मेरिट क्या है,
JNU में तो वो भी है ना कि जब तक आप बुर्जुआ नहीं स्पेल कर पाओगे तब तक क्रांति भी नहीं ला
हाँ
पाओगे। तो वहाँ मार्क्स नहीं, वहाँ
नहीं,
मार्क्स नहीं, मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है। तो वो एक एलीट सर्किल का हिस्सा है, मतलब जितने भी दिल्ली के या फिर बॉम्बे के जितने भी एलीट कॉलेजेस के अंदर आपका एडमिशन भी हो जाए तो उसका फिर एक सोशल सर्किल किस तरह से बनेगा, क्या बातें होंगी, उसमें भी आप आइसोलेटेड फील करोगे अगर आपको आती नहीं वो चीज़ें, वो नेटफ्लिक्स की सीरीज के बारे में आपको नहीं पता, आप जैसे
बिल्कुल
पूल बता रहे
बिल्कुल
हैं उसके बारे में नहीं पता, इन 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 रेवोल्यूशनरी फिगर जो इंटरनेशनल हैं उनके बारे में नहीं पता,
जी
तो वो गैप तो घुसने के बाद भी
जी
बना रहेगा।
जी तो वो रहता है, लेकिन उससे तो हम फिर भी, मतलब वो तो थोड़ा सा क्लास डिफरेंस हो जाता है ना कि आपका, बट ये कास्ट वाला तो मतलब मेरिट का जो है वो सीधे मतलब क्लास से है डेफिनेटली, बट नाउ इट हैज बिकम मोर कास्ट, मतलब ये फ्रॉम द डे वन इट वाज कास्ट एक्चुअली, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट द फर्स्ट पीपल हु टॉक्ड अबाउट रिजर्वेशन रूइनिंग मेरिट वर द लेफ्टिस्ट इन 60s, है ना, 1950s 60s में दे वर द फर्स्ट पीपल टू कॉइन दिस टर्म दैट रिजर्वेशन इज हार्मिंग मेरिट,
तो फिर ये सारी चीजें आपने प्रॉब्लम्स तो देखी, फिर नालंदा के थ्रू आपने किस तरह से किया कि ये इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो नालंदा का मॉडल इस तरह से बनाया जाए कि इन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से बदला नहीं तो एटलीस्ट बहुत कम किया जा सके, तो वो आपने मॉडल फिर किस तरह से तैयार किया?
ये तो ये था कि मतलब मैं तो ट्रेन टीचर नहीं हूँ, आई हैव नेवर बीन, नो नेवर थॉट टू बी अ टीचर, तो मेरा ये था कि कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए, मतलब कि कुछ तो चाहिए जहाँ पे हम बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन कम टुगेदर एंड इंटरेक्ट, एंड ऑल्सो मतलब कुछ तो हम उनको ट्रेन कर सके कि हाउ द वर्ल्ड आउटसाइड इज, है ना, आपको जब आप जाओगे हायर एजुकेशन में तो आपको कैसे देखा जाएगा, क्योंकि आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वेंट टू इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू दैट 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 कास्ट विल प्ले सच अ बिग रोल इन माय लाइफ, है ना, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम था, प्राइवेट स्कूल था, कभी कास्ट से कुछ इतना लेना देना नहीं था, ठीक है, टीचर भी सारे ज्यादातर मलयाली थे, तो आई ग्रू अप इन 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 एन एनवायरमेंट वेयर आई न्यू कास्ट, ऐसा नहीं है कि मेरे को कास्ट का आइडिया नहीं था, आइडिया था, सब कुछ था, डिस्क्रिमिनेशन भी देखा था, अनटचेबिलिटी भी देखी थी, बट योर टीचर विल बी डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट यू, योर टीचर विल बी टारगेटिंग यू, योर टीचर विल बी अब्यूजिंग यू, योर टीचर विल बी जजिंग यू, ये मैंने नहीं सोचा था। मेरे को लगता था कि दोस्त लोग बोलेंगे, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, तुम कौन हो, ये तुम नीची जाति के हो, तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे नहीं। दीस टाइप्स ऑफ यू नो थिंग्स आई इमेजिन्ड कि वो आई हैव सीन दैट। लेकिन दिस आई कुड नॉट इमेजिन दैट टीचर कैन हेट यू, एंड टीचर विल फेल यू, एंड टीचर विल अब्यूज यू, टीचर विल बीट यू अप, टीचर विल थ्रेटन योर कैरियर करियर। तो ये मेरे लिए एकदम नया था। तो और उस समय मुझे यही लगा था कि आई नीडेड समबडी टू टॉक, आई नीडेड समबडी जिसको मैं बता सकूं, जो मुझे बता सके कि अब 16-17 साल की उम्र में मैं घर से पहली बार निकल रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मैं चाहता था कि कोई तो ऐसा मिले जो मुझसे बात करे इस पर। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ही हो रहा है। यू नो द फर्स्ट रिएक्शन वाज दैट मे बी आई वाज रॉन्ग, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ मी हैपनिंग। और एंड आई फाउंड नो वन, है ना, आई फाउंड नोबडी। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल SC/ST टीचर, कोई भी नहीं था। आई कुड नॉट इवन टॉक टू माय फैमिली मेंबर्स, उनको कुछ आइडिया नहीं था इतना। और फैमिली मेंबर्स का तो वही रहता है कि चुपचाप पढ़ लो, अगर है भी प्रॉब्लम तो चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। तो आई न्यू कि फैमिली मेंबर्स भी यही बोलेंगे। तो दैट वाज दैट 3 years ऑफ यू नो पीरियड व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम टू फॉर्म। मतलब इतना मुश्किल था कि आई वाज ऑलमोस्ट सुसाइडल। मतलब मैं सुसाइड नहीं किया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गाली मिल रही है बिना बात के, अब्यूजेस हैं, है ना। और मेरे साथ तो कम होता था क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छे बैकग्राउंड से था, इंग्लिश मीडियम था। मैंने अपने बच्चों को जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब बच्चे जो गांव से हैं, उनके साथ तो बहुत कुछ बुरा होता था। मतलब टीचर भी गाली दे रहा है, साथ में स्टूडेंट्स भी उनको गाली दे रहे हैं, मेस में वो ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s। हाँ, तो रैगिंग में कास्ट बेस्ड रैगिंग होती थी, पूरी कास्ट बेस्ड थी। मतलब आपका कैटेगरी बताओ और उसके हिसाब से आपकी मार पिटाई होगी। तो अब वो सब मैं देख रहा था, मुझे समझ में रहा था कि वो क्यों रहा है। मतलब ठीक है, हम डिफरेंट है, हम शेड्यूल कास्ट है, ये है, लेकिन इतना हेट, इतना हेट। आप मतलब मुझे अभी भी याद है कि मेरा जो एक रूम पार्टनर था, अरोड़ा का था, वो पंजाबी, उत्तराखंड का था बट वो पंजाबी था। तो वो मुझे अभी भी याद है, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर दैट फेस एंड द वे ही टॉक टू मी। वो आया मेरे साथ, हम लोग रूम लेकर एक साथ रूम अलॉट हुआ हमारा। कुछ दिन हम बहुत अच्छे से रहे क्योंकि वो कुड नॉट मेक इट आउट कि मैं कौन हूँ। फिर कभी उसको पता चला कुछ 3-4 दिन बाद, तो मेरे को बोलता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो मैं नहीं रहता तुम्हारे साथ ही। एंड सडनली यू आर सेइंग, अरे ये 4-5 दिन से तो मेरे साथ खाना खा रहा है, घूम रहा है, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, हम लोग नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज में आए। तो ना नया नया इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाते तो आपको लगता है आप हीरो हो गए, ओके आपने एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया। एंड सडनली दिस एंड द वे ही सेज विद इमेंस हेट, मतलब सी ठीक है, आप मतलब नॉर्मली आप बोल सकते हो कि अरे तुम गधे हो, तुम ऐसे हो वैसे, आई कैन अंडरस्टैंड। बट द वे ही सेड यू नो विदाउट इवन लुकिंग एट मी, एंड उसका जो कंटेम्प्ट था उसके चेहरे पर मेरे लिए, एंड सडन, मतलब कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू, तो दैट वाज वेरी यू नो बहुत हिट करता है। फिर मेरा पहले ही दिन हमारे प्रोफेसर साहब जब इंट्रोडक्शन लेते हैं तो बोलते हैं कि जो SC/ST हैं वो अच्छे से पढ़े, मायावती नंबर नहीं देगी, मैं दूंगा। 95 की बात है, मायावती नई नई चीफ मिनिस्टर बनी है। तो अब आप सोचो, पहले दिन ही आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो और आपका प्रोफेसर जो है, एंड इज अ सीनियर प्रोफेसर, हाँ जर्मनी उर्मनी से PhD/USD करके आया, रैंडम ऐसा कोई नहीं है। एंड सडनली से इसकी ये जितने SC/ST हैं ध्यान से पढ़े, अच्छे से पढ़े, मायावती नंबर नहीं देगी, मैं। एंड एवरीबडी इज लाफिंग, है ना, सब लोग हंस रहे हैं, सबको लग रहा है कि बहुत अच्छा सर ने जोक मारा है, और हम 7-8 लोग वहां पे चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना। तो ये सब मेरे लिए इतना शॉकिंग था शुरुआत में, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि क्या है। तो बट वही कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप वहां पे ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, आप कुछ, हम लोग मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। तो देन आई स्टार्टेड, तो कुछ 6-7 महीने के बाद आई स्टार्टेड टेकिंग लीड। मैं अपने बच्चों से जिनको वो परेशान करते थे उनके साथ मिलकर बात करना, प्रोटेस्ट करना, बहुत कुछ किया। तो फिर लास्ट में मुझे बहुत तंग किया गया। तो दैट 3 years पीरियड एक्चुअली वॉज माई यू नो चेंज माई लाइफ अगेन, एंड आई एम रिपीटिंग दैट, बट दैट वॉज अ वेरी क्रूशल पीरियड ऑफ माई लाइफ। एंड दैट वॉज अ टाइम वेन आई देन आई अंडरस्टूड कि हम कितने वल्नरेबल हैं। और ये हम वल्नरेबल क्यों थे, क्योंकि हमारे पास कोई था नहीं हमारी सुनने वाला, हमको बताने वाला। तो हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ही। तो नालंदा का जन्म उसी से हुआ कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं या एक दूसरे से बात करें। दिस वॉज द आइडिया।
तो मतलब इसमें फिर एंट्रेंस किस तरह से आप लेते हैं, बच्चों को किस तरह सेलेक्ट करते हैं, कोई इसमें टेस्ट होता है किस तरह से, वो पूरा प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है? मार्जिनलाइज स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि नालंदा में उनको आना है, या नालंदा जैसी कोई संस्था है जहाँ पे वो जा सकते हैं? तो ये पूरा स्ट्रक्चर, एंट्रेंस का स्ट्रक्चर और स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने का स्ट्रक्चर, ये किस तरह से होता है?
नहीं, एंट्रेंस तो हम लेते ही नहीं क्योंकि हमारी लड़ाई ही उसी के खिलाफ है। तो कोई एग्जाम नहीं होता, कोई एंट्रेंस नहीं होता। मैं आपके नंबर भी नहीं पूछता हूँ कि आपको 12th में कितने आए, 10th में आए, क्योंकि आर होल बैटल इज अगेंस्ट दैट। द आइडिया इज कि वो बच्चे जिनको पढ़ना है बट उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यानी कि गांव से हैं, पैसे नहीं है, या मतलब घर में लोग बीमार हैं जिसकी वजह से उनके ड्रॉप आउट हो गया है ना, ऐसे बच्चों को हम लेते। तो ओनली क्राइटेरिया इज कि आई ट्राई टू टेक दोज स्टूडेंट्स विच आई फील डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच अदर स्टूडेंट्स हैव। नंबर, मेरिट, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ नहीं होता
ये
है
तो आप
क्योंकि
कोचिंग का
आई
अपोजिट कर रहे हैं कि कोचिंग वाले तो उनको लेते हैं
हाँ
जिनका सिलेक्शन हो सके ताकि कोचिंग का नाम
नहीं,
बढ़े, तो
नहीं,
आपका
नहीं,
मॉडल उस
नहीं।
बिल्कुल उल्टा है
उसका
एक
ठीक
तरह से।
उल्टा, मैं ठीक उल्टा, मतलब मैं सबको बोलता भी हूँ कि मेरे को ऐसे बच्चे भेजो जो फेल हो रहे हैं, या जो 40% है, 45% है, और 80-90% वालों को मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। तो अगर कोई इंग्लिश
अच्छा
मीडियम है, 80 परसेंटर है, 90 परसेंटर है, और गाड़ी दिख गई मेरे को, गाड़ी से आया है, तो मैं मना कर देता हूँ। तो मैं वैसे बच्चों को लेता हूँ जो अपना बैग झोला लेके सीधे आते हैं और बोलते हैं सर हमको पढ़ाओ। वो ये भी नहीं पूछते मेरे से कि सर सीट है या नहीं। मेरे पास बच्चे आते हैं और झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, वो पूरा झोला बैग लेके, अपना बिस्तर लेके आते हैं और नालंदा के गेट पे खड़े हो जाते हैं कि सर हमको पढ़ाओ।
और
और
फीस
कोच कब, जीरो।
जीरो
कुछ पैसा
फीस
नहीं देते हैं बच्चों से, पैसा नहीं देते। तो क्योंकि फिर सारा पर्पस ही, मतलब देन अगेन अगर मैं, इफ आई स्टार्ट टेकिंग मनी, अगर मैं 100 रुपए भी अनुराग भाई लूंगा ना, कुछ बच्चे पीछे छूट जाएंगे।
100 रुपये में भी
हमारे बच्चे 100 रुपए में, अरे पॉवर्टी का लेवल हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। जब मैं रियल जब जाता हूँ ना फील्ड में, या बच्चे आते, तब समझ में आता है कि पॉवर्टी का लेवल कितना ज्यादा है। अगर मैं 100 रुपए भी फीस रख दूंगा ना, तो 10 बच्चे छोड़ देंगे। तो क्योंकि अब क्या बोला, मतलब आपको
जो
क्या
कि लोग
बताऊं, ऐसी
सोच भी
ऐसी
नहीं सकते
स्टोरीज हैं।
नॉर्मली, इस तरह से लोग
हाँ,
सोच भी नहीं सकते कि
नहीं
100 रुपये में
नहीं
भी
नहीं
ऐसा हो सकता है, क्योंकि
100 रुपए, अगर मैं 100 रुपए भी फीस रख दूंगा, देर विल बी सम ड्रॉपआउट्स, ठीक है। और फिर हम बच्चों का सारा खर्चा उठाते हैं, रहने का, खाने का। तो सिर्फ फीस, ऐसा नहीं कि हम फीस ही नहीं लेते, वी ऑल्सो प्रोवाइड देम फूड एंड अकोमोडेशन, एवरीथिंग। वो बीमार पड़ते हैं तो उसका भी खर्चा। तो मतलब आप एकदम, एक रुपया भी नहीं है, आप चले जाओ बस।
वाह
तो इससे क्या होता है, फिर बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं क्योंकि वी हैव टेकन केयर ऑफ ऑल देयर बर्डन्स। क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़ा बर्डन होता है, क्योंकि बच्चों को एक्चुअली, गांव के बच्चे और अपने कम्युनिटी में गरीब बच्चे जो होते हैं, शहर को जो सेमी अर्बन से होते हैं, वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो एक गिल्ट भी लेकर जीते हैं कि मैं, हम घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। 10th 12th तक तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ही 12वीं होती है, घर वाले और सब बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उनको समझ में आता है कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, माँ बाप बीमार हैं, घर में 3 बहनों की शादी होनी है, 4 छोटे भाई हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं। तो हमारे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो और ज्यादा गिल्ट लेते जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ कर नहीं रहे। तो वो बहुत तगड़े स्ट्रेस में रहते हैं। तो वो 10 महीने के लिए मैं दूर करता हूँ कि आप, और इवन अगर जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो लेबर होते हैं, मजदूरी करते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ेंगे तो मतलब उनकी मजदूरी चली जाएगी। तो हम उनके घर पे भी पैसा भेजते हैं, ठीक है,
अरे
तुम्हारा
ओ
कितना
अच्छा
कमाते हो, तुम कितना कमाते हो, 3,000, 4,000, ठीक है, तो हम तुमको, तुम्हारे घर वालों को 2,000 भेज रहे हैं, 2,500 भेज रहे, पढ़ो तो। क्योंकि और कोई तरीका नहीं है बदलाव। ये अगर हम उस लास्ट बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर देर इज नो मीनिंग, मतलब फिर मेरे को तो कुछ मीनिंग नहीं लगता है
लेकिन
इफ आई एम
सर
नॉट
हाउ डू
एबल
यू
टू रीच
सस्टेन
टू।
इस मॉडल में?
फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, अभी मुझे कुछ 25 साल हो गया ऑलमोस्ट काम करते करते, अगर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से काउंट करूं तो। बहुत सारे दोस्त बने इनसाइट की वजह से, मैगजीन की वजह से, डॉक्यूमेंट्रीज की वजह से। तो लोग मुझे 20-25 साल से काम करते हुए देख रहे हैं, तो लोगों को काफी ट्रस्ट है मेरे ऊपर। और मैं इंडिविजुअल सपोर्ट लेता हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, मैं एनजीओ से नहीं लेता, मैं किसी के पास नहीं। आई बस एक बार साल में एक बार ट्विटर व्टर पे एक बार डाल देता हूँ कि भाई मुझे ये इतना चाहिए, एंड वी गेट। और दूसरा ये होता है कि हमारा जो मॉडल है वो थोड़ा सस्टेनेबल इसलिए है क्योंकि हमारा बहुत सारा काम वॉलेंट्री है ना। तो मैक्सिमम हमारा जो है वो सब कुछ हम अपने आप ही कर लेते हैं, सब कुछ अपना वॉलेंट्री ही है। तो हमारा बहुत ही मिनिमम फाइनेंशियल बर्डन पे हम काम करते हैं, बहुत ही कम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में हम काम करते हैं, इतना हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज करते हैं। और दूसरा कम्युनिटी सपोर्ट के होने की वजह से, जैसे कि नालंदा जो है उसको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है रेंट के लिए जाके, क्योंकि वो बुद्ध विहार में हम पढ़ाते हैं, तो हम कम्युनिटी ने उसको फ्री में दे रखा है। हम तो हमारा बहुत सारा काम ऐसे ही हो जाता है क्योंकि कम्युनिटी को समझ में आता है कि हम उनके बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो पैसे नहीं लेते हम मेरे से। तो मेरा बहुत सारा काम जो है बहुत कम पैसे में होता है,
क्यों
तो दैट
कई
इज
लोग
द
तो
वे आई
इसलिए
अरेंज
नहीं
बिजनेस।
करते कि वो लोगों को लगता है इम्पॉसिबल है इसको सस्टेन करना, बिना पैसे लिए कैसे हो सकता है, फ्री में कैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, तो कई लोग तो करते ही नहीं कि ये पॉसिबल ही कैसे, जैसे मतलब सुनने में ऐसा लगता है
नहीं, आई
कि
आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अनुराग भाई अभी मुझे तो इसके अलावा कोई ऑप्शन दिखता नहीं कि एक कम्युनिटी जिसको इतनी गालियां दी जाती हैं कि इसमें मेरिट नहीं है, योग्यता नहीं है, इसके लोग सेल्फिश होते हैं, इसके पढ़े लिखे लोग इसको धोखा देते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू फाइट ऑल दीज बैटल्स विद मानव, ठीक है? इट्स नॉट वन बैटल, आई एम नॉट फाइटिंग जस्ट वन बैटल ऑफ मेरिट, आई एम ट्राइंग टू फाइट मैनी बैटल्स इन दिस की हमारे लोग चला नहीं पाते हैं किसी काम को, इनिशिएटिव को, है ना? हमारे लोग बिक जाते हैं जल्दी, हमारे लोग में, तो ये सारी चीजों से मैं लड़ रहा हूँ। और क्योंकि तभी कम्युनिटी में प्राइड आता है। देखिए कोई भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी जो होती है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाता है खुद की कैपेबिलिटीज में। आप चाहे वो ब्लैक्स को देख लो, चाहे आप विमेन, अगर आप जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखो, तो हर ऑप्रेस्ड कम्युनिटी का यही एंगल होता है कि जो ऑप्रेसर है वो आपको बार बार ये बोलता है कि तुम काबिल नहीं हो,
हाँ, जैसे औरतों ही बोलता है तुम ये नहीं कर सकती, या फिर ये
तुम
वाला
ये
जॉब
नहीं
तुम
कर
नहीं कर
सकते,
सकती।
तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं होगा, तुम्हारे लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारे लोग धोखा देते हैं, तुम्हारे लोग बिक जाते हैं, तुम्हारे लोग दारू के एक आ, आ, उस पे वोट देते हैं, है ना? मैं तो यही सुन सुन के बड़ा हुआ, है ना, कि तुम दो लोग जुड़ते हो तो 4 ग्रुप बन जाते हैं। तो वो सब है, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग दैट कि दैट 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 डजंट हैपन और दैट कांट हैपन, आई एम ट्राइंग टू सी दैट वी आर एज गुड एज एनीवन, वी आर एज टैलेंटेड एज एनीवन। हम भी इंसान हैं, हम कुछ अलग नहीं है, मतलब हम में और किसी में भी कोई अंतर नहीं है। एंड दिस आई एम नॉट प्रूविंग टू अपर कास्ट, मैं तो अपर कास्ट से एंगेज भी नहीं करता, तो मेरा तो मतलब मेरा वो फोकस में नहीं है, मेरे वो रेफरेंस में नहीं है। मैं
बहुत
जब
बढ़िया
मेरिट की
बात है
बात
जो
करता
कि
हूँ, हाँ, जो मैं मेरिट की बात होती है तो भी मैं अपर कास्ट शब्द का भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो बोलता भी नहीं, मेरी मेरी दुनिया से वो बाहर है ना, मेरे मेरे वो रेफरेंस में भी नहीं है और मैं एंगेज भी नहीं करता। इफ यू हैव नोटिस्ड आई नेवर एंगेज विद अपर कास्ट, मैं अपर कास्ट प्लेटफॉर्म में नहीं जाता, मैं उनसे कुछ लेना देना नहीं रखता। दोस्त बन सकते हैं, यू आर वेलकम, वी कैन बी अ गुड फ्रेंड, बट आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप मुझे दे सको, ठीक है, सिवाय पैसों के, पैसे दे सकते हो, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी कम्युनिटी के पास कुछ कमी है किसी चीज। तो विद दैट आइडिया नालंदा हैज बीन क्रिएटेड कि वी हैव टू प्रूव, नॉट टू अदर्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रूविंग टू अदर्स, आई वांट टू प्रूव टू आवर कम्युनिटी कि हम भी हैं टैलेंटेड, हम भी उतने ही मोटिवेटेड है, हम भी उतने ही अच्छे हैं, हम भी उतने ही विजनरी हैं, हम भी उतने ही कम्युनिटी के प्रति लॉयल है जितना और कोई हो सकता है। हम कर सकते हैं, है ना, हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस रन कर सकते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशंस रन कर सकते हैं, और खुद अपने खून पसीने से कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है देना, एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू इन नालंदा.
इनक्रेडिबल. और मैंने ये भी देखा है कि आप ज़्यादा जैसे प्रमोट भी नहीं करते किसी मीडिया वीडिया में. बहुत सारी मीडिया आपसे बात भी करना चाहती है, वो भी मुझे पता है. काफ़ी लोग मुझे भी बोलते हैं बात करने के लिए और वो सब. तो आप हमेशा इन इन चीज़ों से बड़े दूर रहते हैं, किसी प्रकार के
क्योंकि
प्रमोशन से या
क्योंकि
फिर
मेरा
कोई.
मेरा मेरा ऑडियंस वो नहीं है, मेरा ऑडियंस बहुत अलग है. तो अपना प्लेटफॉर्म अगर कोई होता है बहुजन प्लेटफॉर्म, तो आई एम ऑलवेज रेडी. मैं कितने सारे इंटरव्यूज में देता हूँ अगर मुझे पता चलता है कि अपना प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेरी ऑडियंस वहां पे. जो मेरी ऑडियंस ही नहीं है, अभी मैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, मैं क्या जाके करूंगा. एक तो मेरे को अपर कास्ट से इंगेज करना ही बहुत ट्रॉमेटिक लगता है, क्यों मेरे को उनको बहुत कुछ समझाना पड़ता है. कि पहले तो ये बोलेंगे कास्ट है, कास्ट है क्या.
उसी में 1 घंटा
तो
निकल जाएगा.
अब हाँ ना, अब मैं अगर बोलूँ कि क्या है, आज भी है इंडिया में कास्टिज्म, क्योंकि आई यूज टू एंगेज अर्लियर. अगर आप मेरा पहले का देखें इनसाइड फाउंडेशन का, तो मेरा तहलका में, इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में आई यूज टू, बट इट बिकेम वेरी ट्रोमेटिक आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि यस दिस इज रियल, मैं सच बोल रहा हूँ. ठीक
बेसिक
है,
चीजें
तो
बतानी है
फिर
बार बार.
हाँ बेसिक चीजें बतानी पड़ती हैं कि यादव SC नहीं है, OBC है. मुझे वो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग था. वन ऑफ द जर्नलिस्ट बहुत ही हाई फ्लाइंग जर्नलिस्ट है, और ज्यादातर वो फॉरेन पब्लिकेशन के लिए लिखती हैं. तो ऐसे एक बार उनसे बात बात हुआ, तो मैं दिल्ली में था, तो उन्होंने फोन किया मेरे को, अनुप ये बताओ यादव SC होते हैं या OBC होते हैं.
बाप रे, वो
जो
भी
अभी फिर एक बहुत ही मतलब फेमस वो है कि एक एकेडमिक थे बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट के, तो वो बोलते हैं कि जय भीम, आई डोंट नो व्हाई दलित से जय भीम. जय भीम तो मींस वो भीम, वो महाभारत वाले भीम, उनको क्यों बोलते हैं दलित लोग. तो ठीक है, ये मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं, मैं ये नहीं
बट
बोल
हाँ,
रहा हूँ कि
यादव
सारे
वाला
ऐसे
तो
होते
पहली बार
हैं.
सुना है मैंने. ये एलविश यादव को
बट
युवा दलित नेता बता दें, अगर एक कोई पॉपुलर फिगर
तो अभी मेरे साथ, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है. फिर
आजकल.
वो आई बिकम देयर गेट कीपर ऑफ द दलित मूवमेंट. फिर वो मेरे को डायरी की तरह यूज करते हैं कि अरे अनूप मेरे को इस पर इंटरव्यू लेना है, तुम बताओ मेरे को कोई दलित. तो 1-2 साल दिल्ली में मेरे साथ हुआ, फिर मेरे साथ ये टाइम वेस्ट. पहली बात मेरा ऑडियंस नहीं है ये, और दूसरी बात फॉर मी इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम. आई एम हियर फॉर द कम्युनिटी एंड आई नीड टू टॉक टू द कम्युनिटी. मेरा पूरा पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द है. ठीक है, जब मन करेगा मेरा देन आई विल एंगेज, जब मुझे लगेगा कि कुछ मेरे को कुछ फायदा है. अब मैं दूसरों के फायदे के लिए क्यों एंगेज करूं, मतलब अपना टाइम वेस्ट करूं. आई एम नॉट गेटिंग. तो मेरे को बोलते हैं कभी कभी मेल करके, ये बड़े बड़े प्रोफेसर भी बोलते हैं, ओ अनु यू नीड टू एंगेज, यू नीड टू टॉक टू अस सो दैट आपका काम पूरी दुनिया में जाना जाएगा. मैंने कहा पूरी दुनिया में जहां जहां दलित है वहां वहां हमारा काम है, पता है सब. और जहां दलित नहीं है, आदिवासी, उनको क्या मतलब है. अभी मैं गोरों को बता के क्या करूंगा कि मैं कितना अच्छा काम करूं. मेरे को नहीं चाहिए डॉलर, मेरे को नहीं कोई चाहिए, मेरे को जो चाहिए वो मेरे को मिल रहा है यहाँ. एंड जितना रिसोर्सेस चाहिए, 10 साल से चल ही रहा है भाई, 10 साल से चल रहा है, 10 साल और चल जाएगा, हो गया काम. मेरा वो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कुछ सैकड़ों साल तक इंस्टीट्यूशन चलना चाहिए. आई एम वेरी प्रैक्टिकल इन दिस. 10-20 साल चलेगा, उसके बाद इसका भी पतन हो जाएगा, बट एज एन आइडिया इट हैज टू सक्सीड फॉर मी. इनसाइट नालंदा जो है एज एन इंस्टीट्यूशन, इट डजेंट मैटर, 5 साल बाद बंद भी हो जाएगा, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. बट आई विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हाउ सक्सेसफुल इट हैज बीन एज एन आइडिया. क्या ये बच्चों को, दूसरे लोगों को इंस्पायर कर पाया है ना. कुछ लोग और ये काम सुनकर क्या लोगों ने इस तरीके से सोचना शुरू किया. अगर आप देखो अनुराग भाई, तो पिछले 5-6-10 साल में हायर एजुकेशन पर बहुत बात होने लगी है, पहले नहीं होती थी. आजकल हर कोई मेंटर बनना चाहता है दलित और आदिवासियों का, सब सबका SOP करना चाहते हैं, सब सबको, सारे दलितों को, आदिवासियों को फॉरेन नहीं भेजना चाहते. तो हाउ डेट दिस चेंज हैपन. 10 साल पहले हमको बताते भी नहीं थे कैसे फॉरेन जाना, जियारी क्या होता है. मेरा एक और बड़ा मजेदार किस्सा है, मैं सुनाता हूँ. मैं एमए कर रहा था JNU में, तो हमारे बाजू में एक चाट लड़का रहता था हरियाणा से, एलिट. 2 साल तक तो वो मस्त रहा, गाना वाजा सब कुछ था. उसके बाद एमए करने के बाद पता चला वो US में है. सो आई वाज शॉक्ड यार, ये तो दिन भर गांजा पी के बुला रहता था, ये यूएस कैसे पहुंच गया, है ना। एंड आई हैड एब्सोल्यूटली नो आइडिया कि ये जीआरई भी कुछ होता है, ये कोई बाद में पता चला कि उनको सब पहले से ही, यू नो दे हैव दे नो जीआरई क्या है, पहले से तैयारी चल रही है, सब कुछ पहले से पता है और हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस, इतना बड़ा अंतर है। तो वो
अब यूएस में गांजा भी लीगल है तो उसके लिए परफेक्ट
नहीं, अभी तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सुधर गया, मतलब
है।
नहीं, ही इज गुड फ्रेंड ऑफ, तो
चलो
ऐसा कुछ नहीं है। बट इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि यार इतनी आसानी से कैसे हो जाता है। तो बाद में पता चला कि अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, आपको कोई गाइड करने वाला है, तो हमारे बच्चे भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी नालंदा के 37 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मतलब गांव के बच्चे। तो कुछ जादू नहीं है, कोई मिराकल नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई नो च्यवनप्राश गुट्टी या कुछ गुट्टी पिला दिया कि वो एकदम से। वो ये है कि सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि भाई IELTS है, GRE है, 6 महीने ये किताब पढ़ो, ये आप ये ऑनलाइन कुछ ये टेस्ट पेपर्स लगा लो, और ये SOP ऐसे लिखना होता है, ये प्रोफेसर का ईमेल है, ईमेल करो, SOP में ये लिखना होता है। 10 बार ट्राई करते हैं, 3 बार में निकल जाते हैं, 10 बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं तो 3 4 5 निकल गए। जहां 0 निकल रहे थे, जहां एक भी नहीं निकल रहा था, वहां 3 4 बच्चे निकलने लगे, 10 बच्चे ट्राई कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट हैविंग इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, नथिंग, कुछ भी
हाँ,
नहीं।
एक बस वो एक एंड में जाते जाते अगर आप ऐसे कोई एक एक दो तीन ऐसे कोई स्टूडेंट की आपकी कुछ स्टोरी बताएं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने इस फील्ड के अंदर वो आगे बढ़े। एक जैसे मेरा दोस्त है भट्टाराम, उसको मैं जानता हूँ, राजस्थान के बड़े ही मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आता है। अब शायद वो एम्स्टरडेम में है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो, शायद
नेदरलैंड में,
वो
हाँ नेदरलैंड
नालंदा के थ्रू हो गया था। तो ऐसी कोई स्टोरी
में।
आप
जी
अगर
जी
सुनाना चाहे जाते जाते एक दो स्टूडेंट्स की।
बहुत सारे स्टोरीज हैं। एक कहा हमारी स्टोरी जो है एक बच्चे की, कि मैं जहाँ पे पहले पढ़ाता था, एक छोटी सी जगह मार्केट वर्धा में, जब नया नया आया था, तो मैं कुछ जीरोक्स कराने के लिए, नोट्स के लिए, जीरोक्स मशीन सामने थी दुकान, वहां पे जाना पड़ता था। तो मैं हर दिन जाते नोट्स बच्चों के लिए जीरोक्स कराना था। तो वहां पे मैं देखता था कि एक लड़की जो है, बच्ची, वो मशीन चलाती है और जो मालिक है वो बैठा रहता है, और वो मशीन चला के जीरोक्स देती थी। तो वो ऐसे हर दिन जाता था। तो वो एक दिन मेरे से पूछा, सर आप क्या पढ़ाते हो? तो मैंने बोला, बेटा मैं ये 12वीं के बाद के बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम ये सब की तैयारी करा। तो मतलब उसके लिए नया था, तो क्या? तो बोली मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा आ जाओ। तो मैंने पूछा क्या है? तो बोली कि मेरे पेरेंट्स हैं वो सेपरेटेड हैं, एंड आई एम द ओनली वन हु इज अर्निंग, और मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, तो कैसे होगा, मुझे तो मैथ भी नहीं आती, मैं तो ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है। और मैंने कहा आप आओ तो सही, देखो तो सही। तो कुछ दिन नहीं आए, फिर कुछ एक दिन क्लास में देखा मैंने वो बैठे हुए, ठीक है। तो उसको मतलब शी वॉज रियली फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, और उसको बिल्कुल भी मतलब मैथ में इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम थी, है ना। एंड शी वॉज द ओनली वन हु वॉज अर्निंग इन द फैमिली। उसने हिम्मत करके वो जॉब छोड़ा और वो पढ़ना शुरू हुई, है ना। पढ़ी 1 साल, हम लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया उसको, फाइनेंशियली भी किया। फिर वो अगले साल अपनी छोटी बहन को लेके आए, वो भी पढ़ी। फिर उसके बाद अपने छोटे भाई को लेके आई, तीनों भाई बहन पढ़े, और एक जो है वो खुद टिस में चली गई, अभी शी इज अर्निंग। और जो उसकी छोटी बहन है वो अभी लंदन में है, शी हैज अभी जस्ट उसने वो APU में उसने ग्रेजुएशन किया था, एंड नाउ शी इज डूइंग हिज मास्टर मास्टर्स फ्रॉम लंदन। और जो छोटा भाई है वो जस्ट अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गया है। और ये जो बच्ची है, तीनों लोग बहुत अच्छे पढ़ गए, और ये जो बच्ची है इसने क्या किया, जैसे ही सैलरी मिलना शुरू हुई, तुरंत ही अपना जो गांव का था, जो जहाँ पे झगड़ा था उसके फादर वादर का, अपनी मदर को, अपने छोटे भाई बहन को लेकर शहर आई, प्लॉट खरीदा और मकान बनाना शुरू किया, और अभी उसका मकान बन रहा है। तो मेरे लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना इतना अच्छा लगा कि एक बच्ची जो एक दुकान में 2 3 हजार रुपए में काम करती थी, जिसका काम सिर्फ जेरोक्स मशीन का है, ठीक है, उसका दोनों छोटे भाई बहन गांव में हैं, कुछ कर रहे हैं, एंड सडनली शी इज अर्निंग 50 60 thousand आफ्टर टिस टिस से पास आउट होकर, आज वो 50 60 70 हजार कमा रही है, अपना घर बना रही है, अपने मम्मी और छोटे भाई बहनों को पढ़ाया उसने। उसकी छोटी बहन आज लंदन में है, ठीक है, और ये सिर्फ 5 साल पहले नहीं था, तो विद इन 5 ईयर्स 6 ईयर्स इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मेरे लिए मतलब क्या बोलूं इतना इतना खुशी देता है। और ऐसे तो मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चों की यही कहानी, तो इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि ये विशेष है या वो विशेष है, सारे बच्चों की लगभग यही कहानी है। मेरे पास ऐसी भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी मदर देवदासी हैं, है ना, ऐसी भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस सह के आई हैं बच्चियां, है ना, बहुत सारा अब्यूजेस रह के आए हैं, एंड समबडी टेल्स देम कि जाओ वहां पे वर्धा में, वहां पे है एक सर जो आपको फ्री में रखते हैं। तो बच्चे आ जाते हैं मेरे पास और फिर रहती हैं, और देन दे गेट टू टॉप यूनिवर्सिटी और फिर उनका करियर बन जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब के शिकार हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, मतलब वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम कि मुझे कुछ भी ऐसा कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। देखिए मैं वही बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी विशेष नहीं करना होता है, जस्ट बच्चों पर फेथ करना होता है। कि अब जैसे मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप ये बच्चों को फ्री में पढ़ाते हो तो क्या ये पे बैक करते हैं, क्या इनको पे बैक करना चाहिए, पे बैक कर आप क्या बॉन्ड भरवाते हो क्या? मैं बोलता हूँ मैं क्यों बॉन्ड भरवाऊंगा, मैं क्यों सोचूं कि ये पे बैक करे, मैं पे बैक कर रहा हूँ ना, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ये काम अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ ना, आई एम ट्राइंग टू पे बैक, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कि स्टूडेंट पे बैक करेगा या नहीं करेगा, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव स्टूडेंट दैट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। ठीक है, तो और वो देना बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है, बस बच्चों पर आपको फेथ करना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर कोई स्टूडेंट मेरे को बोलता है सर मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है मेरी माँ बीमार है, मेरे पापा बीमार हैं, या मेरे घर से पैसा नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को पास अपना पासबुक दिखाओ और रुपये दिखाओ, मैं दे देता हूँ। आई टेल देम कि आई हैव फेथ इन यू, ठीक है मेरे को सुनना ही नहीं है, कि मेरे को जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं मना कर कि नहीं है भाई पैसा नहीं, लेकिन अगर मेरे पास है आई विल सपोर्ट यू बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव दैट सेंस कि समबडी इज हैविंग फेथ इन। ठीक, उसमें धोखा भी दे सकते हैं बच्चे, देते भी होंगे मुझे नहीं मालूम, तो एक दो बच्चे झूठ झूठ भी बोलते होंगे, बट इट्स ओके, आई मीन 100 बच्चों में अगर 98 बच्चे जेन्युइन है, एक दो बच्चे कुछ उल्टा सीधा बोले तो आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। उस फेथ पर क्या होता है फिर बच्चे बहुत मेहनत, मतलब मेरे यहाँ कभी आना नालंदा में, मैं रहूं या ना रहूं क्लास में, सुबह 8 से रात के 8-9 बजे तक बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते। इनडिसिप्लिन, लड़ाई झगड़ा बहुत रेयर होता है, क्योंकि तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि यार ये एक मौका है हमारे लिए, और दूसरा वो देखते हैं ना कि एलुमनाई, अरे हमारे ही गांव से थे आज यहाँ पे है, लंदन में है आज, ये नीदरलैंड में है, तो फिर वो जो बच्चे आते हैं ना वो इतने फोकस्ड रहते हैं। तो बस यही है, मतलब एज अ टीचर मेरा रोल यही है कि बच्चों पर फेथ करना, बच्चों को ये लगना चाहिए कि कुछ मेरा अल्टीरियर कुछ ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं वो कल को कुछ उनका यूज करूंगा, वो नहीं लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि इट्स एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट एंड इट्स एफर्ट टू बिल्ड कम्युनिटी, और बच्चे पे बैक करते हैं। मेरे को तो आज तक किसी का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला हो जो उसने बोला हो कि नहीं सर अभी हम निकल गए तो अभी हमसे कोई मतलब है, तो ऐसा तो आज तक मेरे को नहीं मिला। तो वो है ये सब चीजें, तो मेरे लिए बस वही है कि दो चीज हमको कम्युनिटी समाज ने नहीं दी, समाज ने हमको हमेशा कमजोर माना है ना, गंदा माना, इंफीरियर माना। मैं मेरे बच्चों को वो नहीं देता हूँ, मैं बच्चों को उल्टा, ठीक तुम सबसे अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम पर मैं पूरा फेथ है, तुम बहुत काबिल, तुम कर सकते हो, ठीक है मैं ठीक उसका उल्टा चलता हूँ जिसका रिजल्ट मिलता है।
ऐसा
बस यही है नालंदा और कुछ नहीं।
थैंक यू सर, इट वाज इंस्पायरिंग एंड आल्सो इमोशनल फॉर मी द होल डिस्कशन. सो आई डोंट नो, इट्स एन एक्सट्रीमली रेवोल्यूशनरी वर्क दैट दैट यू आर डूइंग. एंड आपने वो इनिशियली भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ऐसा भी लोग बोलते हैं कि समाज एक साथ नहीं रह सकता, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकता. आप उसको भी एकदम मतलब इट्स इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग दैट दैट what you are doing, and I really have no words for that. So, and
I
hope that more and more people pick up this idea in the future and do something in the same field, because you have proven that it is possible even without any resources, even without any large backup from any NGO or any corporate. So thank you so much, sir, for coming to the podcast and sharing your insights.
Thank you
Jai Bhim, sir.
Acha laga aap se baat. Jai Bhim dost, Jai Bhim.
So this was today's episode. If you like it, then please don't forget to support it through Buy Me a Coffee wishlist, which is mentioned in the description box. You can also check out links for the Patreon, Instamojo, PayPal, and many other different modes of support. So please do consider it. I'm also mentioning the link for the website of Nalanda Academy. You can check that out and support them as well.